यह जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का जो चैप्टर हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ये अगर क्रम से समझेंगे ना तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, और मेरी बात सुनेंगे और पुस्तक की पंक्ति देखेंगे, देखते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए में जो है आप लोगों को कष्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है ना, अपनी पुस्तक में देखिए, इन्होंने संक्षेप में जितनी ही बातें पहले आई हुई हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बारे में, संक्षेप में यहाँ पर इन्होंने संग्रह करके बताया है, ताकि एक बार जो है ना आपको सबका स्मरण हो जाए। तो इस तरह से कहते हैं तदेवम संक्षेपतः, इस तरह से संक्षेप से अगर हम समझना चाहें तो पंचविध संबंध अन्यतम संबंध संबद्ध विशेषण विशेष भाव लक्षणेन इंद्रियार्थ सन्निकर्षेन अभावः इंद्रियेन गृह्यते। कहा कि ये छठवें सन्निकर्ष को संक्षेप में बता रहे हैं, कहा कि अभावः इंद्रियेन गृह्यते, अभाव का जब इंद्रिय से ज्ञान होता है तो उस समय में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कैसा होगा, तो कहते हैं कि विशेषण विशेष भाव लक्षण जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है उसके द्वारा अभाव का इंद्रिय से ज्ञान होगा। यह जो विशेषण विशेष भाव लक्षण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वह कैसा है, तो पंचविध संबंध अन्यतम, माने पांच जो पहले संबंध बताए गए हैं, संयोग संबंध, संयुक्त समवाय संबंध, संयुक्त समवेत समवाय संबंध, समवाय संबंध, इस तरह से ये तो चार हुए, और पांचवा था समवेत समवाय संबंध। इन पंचविध संबंध ये पांचों हुए, इससे अन्यतम, अन्यतम माने इससे भिन्न। एक चीज आप जान लीजिए कि दो में से अधिक, दो से अधिक को अगर कहना हो तो वहां पर तर प्रत्यय लगाया जाता है, और तीन से नहीं, गलत हुआ, दो में से एक को लेना हो ना तो उस वहां पर तर प्रत्यय लगाया जाता है, और दो से ज्यादा में से अगर एक को अलग करना हो तो वहां तम प्रत्यय लगाया जाता है। अब जैसे दो बच्चे हैं राम और श्याम, तो राम और श्याम में से अगर किसी एक को बुलाना हो तो हम कहेंगे क्या कि राम और श्याम में से अन्यतर को बुलाओ, तो क्योंकि दो ही है ना यहाँ पर, तो दो में से एक को बुलाना है तो कहेंगे राम और श्याम से अन्यतर को बुलाओ, और अगर तीन होंगे राम श्याम घनश्याम तो फिर क्या कहना होगा कि राम श्याम और घनश्याम में से अन्यतम को बुलाओ, माने इन तीनों में से किसी एक को बुलाओ। यहाँ पर जो है पंचविध संबंध अन्यतम कहा है, माने पांच प्रकार का जो संबंध है उससे अन्य, माने उससे भिन्न, उससे भिन्न कौन होगा, छठवां जो होगा ना वही भिन्न होगा, वह संबंध कौन है, छठवां संबंध विशेष विशेषण भाव संबंध है, तो उसी के लिए यहाँ पर प्रयोग किया इन्होंने पंचविध संबंध अन्यतम संबंध। तो पंचविध संबंध से भिन्न वाला जो संबंध है वह कौन हुआ, तो विशेष विशेषण भाव संबंध हुआ, और विशेष विशेषण भाव संबंध से ही जो है अभाव का इंद्रिय से ज्ञान होता है। ऐसे ही आगे कहते हैं एवं समवायोपी, इसी तरह से जो है समवाय नाम का जो सन्निकर्ष है उसे भी समझना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि चक्षु संबद्धस्य तंतोः विशेषण भूतः पट समवायो गृह्यते यह तंतुषु पट समवाय इति। अब समवाय नाम का जो सन्निकर्ष था वहाँ तो शब्द ज्ञान वाला उदाहरण दिया था ना, यहाँ एक और उदाहरण दे रहे हैं कि चक्षु संबद्ध जो तंतु है, तंतु समझते हैं ना सूत, जिस सूत से वस्त्र जो है ना बुना जाता है उसको तंतु कहते हैं और वस्त्र को पट कहते हैं। तो कहते हैं कि चक्षु संबद्धस्य तंतो हो, तंतु का षष्ठी के एक वचन में तंतो बनेगा, माने चक्षु इंद्रिय से जो संबद्ध है, माने संयोग नाम के संबंध से जो संबद्ध है, संबंधित है कौन, तंतु, उस तंतु में विशेषण भूतः पट समवायो गृह्यते, उस तंतु में विशेषण भूत जो है पट का समवाय उसका जब ज्ञान होता है। अच्छा ऐसा है ना कि ये छठवां जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है विशेष विशेषण विशेष विशेषण भाव नाम का सन्निकर्ष, उससे दो चीज वस्तुओं का ग्रहण होता है, एक तो अभाव का ग्रहण होता है और दूसरा समवाय का भी उसी से ग्रहण होता है। मैंने इससे पहले बताया कि ये समवाय नाम के संकर्ष का दूसरा उदाहरण है, ऐसा नहीं है। इसमें पहले तो ये बताया कि अभाव का जो ज्ञान होगा वो होगा छठवें संकर्ष के द्वारा। अब दूसरा भी उदाहरण बता रहे हैं कि समवाय का जो ग्रहण होगा ना, समवाय का जो ज्ञान होगा उसमें भी विशेष विशेषण भाव नाम का ही संकर्ष काम करता है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए यहाँ कि तंतु जो है और पट जो है, तो पट किस में रहता है? तंतु में रहता है। किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है। तंतु में पट रहता है किस संबंध से? समवाय संबंध से। तो तंतु में जो पट का समवाय संबंध का ज्ञान होगा वो इसी संबंध के द्वारा होगा, विशेष विशेषण विशेषण विशेष भाव नाम के संबंध से। वही कह रहे हैं कि चक्षु संबद्ध से तंतु हो, चक्षु इंद्रिय से संबद्ध जो तंतु है उस तंतु, वह तंतु विशेष हो गया और उसमें विशेषण भूत कौन है? पट का समवाय। उसका जब गृह्यते मान, जब पट के समवाय का ज्ञान होता है, वह ज्ञान कैसा होगा? तो उसका आकार बता रहे हैं, ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। यह तंतुषु पट समवाय, कि यहाँ तंतुओं में पट का समवाय है। इस तरह का जो ज्ञान होता है उसमें भी विशेष विशेषण भाव का संकर्ष नाम का संकर्ष काम करता है, उसमें विशेषण हो जाएगा चक्षु संबद्ध तंतु, विशेष होगा चक्षु संबद्ध तंतु और विशेषण होगा पट का समवाय। तदेवम सोधा सन्निकर्षो वर्णित, इस तरह से छह प्रकार का सन्निकर्ष जो है वर्णित किया गया। संग्रहश्च, अब यहाँ दो श्लोकों के माध्यम से इन तमाम बातों का संग्रह किया गया है, जो मैंने आज के पाठ के शुरू में कहा था, यहाँ संक्षेप से पूरी बातें बताई जाएंगी, तो एक बार देख लेते हैं। अक्षजा प्रमितिर द्वेधा, अक्ष माने याद करिए मैंने कहा था अक्ष माने इंद्रिय, लोग न प्रत्यक्ष में का विच्छेद करते हैं प्रति अक्ष, और जब पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष में अक्ष का क्या अर्थ है तो लोग कहते हैं अक्षी, अक्षी माने आँख, ऐसा नहीं है। अक्ष मतलब होता है इंद्रिय, और इंद्रिय चूंकि आँख भी है इसीलिए अक्ष का अर्थ आँख भी होगा, नाक भी होगा, कान भी होगा, ये जितने ज्ञान इंद्रिय हैं सब होंगे। तो अक्षजा प्रमिति ही द्वेधा, अक्षजा, जा माने उत्पन्न, तो अक्ष से उत्पन्न जो प्रमिति है वह प्रमिति, प्रमिति मतलब ज्ञान, जिसको प्रमा कहते थे ना, प्रमा प्रमिति ज्ञान ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो अक्ष से जा माने उत्पन्न होने वाला वाली जो प्रमिति माने ज्ञान, इसको अगर आसान भाषा में कहें तो अक्षजा प्रमिति कौन कहलाएगी? तो प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द होगा अक्षजा प्रमिति का प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा प्रत्यक्ष प्रमा। तो ये तीनों पर्यायवाची शब्द हो गए, अक्षजा प्रमिति, प्रत्यक्ष प्रमा, प्रत्यक्ष ज्ञान। तो अक्षजा प्रमिति जो होती है वह द्वेधा दो प्रकार की होती है, कौन? स्वविकल्पक, स्विकल्प अविकल्पिका, माने स्वविकल्पक प्रत्यक्ष और अविकल्पक प्रत्यक्ष, स्वविकल्पक ज्ञान और निर्विकल्पक ज्ञान, निर्विकल्पक और अविकल्पक समान अर्थ को ही बताता है। कर्णम त्रिविधम तस्याः, और ये जो स्वविकल्पक निर्विकल्पक प्रमा होती है उसमें कर्णम त्रिविधम, तीन प्रकार का करण होता है जो पीछे बात आ चुकी है। फिर सन्निकर्षस्तु षड्विधः, और फिर सन्निकर्ष जो होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वह छह प्रकार का होता है। अब वो छह प्रकार के जो सन्निकर्ष हैं उससे किसका किसका ग्रहण होता है वो क्रम से बताया गया है। ऐसा है कि छह सन्निकर्ष को एक जगह लिख लीजिए क्रम से, और इन सब बातों को उसके सामने एक एक को लिख लीजिए, तो सबके उदाहरण जो है ना हो जाएंगे। पहला जो सन्निकर्ष है उससे घट का ज्ञान होता है, घट तन्नील। फिर दूसरा जो सन्निकर्ष है उसमें तन्नील का ज्ञान होता है, तत् से घट को ले लीजिए, माने घट में रहने वाला जो नील रूप है उसका द्वितीय सन्निकर्ष से ज्ञान होता है, और उस नील में रहने वाला जो नीलत्व रूप है, नीलत्व सामान्य है, नीलत्व जाति है, उसका ज्ञान जो है तीसरे सन्निकर्ष से होता है। चौथा जो समवाय नाम का सन्निकर्ष था उससे शब्द का ज्ञान होता है। पांचवा जो सन्निकर्ष था उस सन्निकर्ष से शब्दत्व जाति का ज्ञान होता है। पांचवा सन्निकर्ष कौन था? समवेत समवाय नाम का सन्निकर्ष था, तो शब्दत्व जात या शब्दत्व जाति का जो है ग्रहण होता है। और छठवां जो सन्निकर्ष है विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष, उससे दो का ग्रहण होता है, अभाव समवायो, अभाव का भी ज्ञान होता है और समवाय का भी ज्ञान होता है। चौग्राह्या संबंध सत्कता, छह प्रकार के जो संबंध है, उन छह तरह के संबंधों से इन छह का जो है ना ग्रहण होता है। तो आप जो है ना स्मृति में रखने के लिए, याद करने के लिए ये श्लोक बड़ा ही अच्छा है। इससे क्या होगा ना कि सबका उदाहरण जो है आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना अभी तक हमने ये छह प्रकार के संकर्ष को पढ़ा। लास्ट में जाकर के ना जो ना बौद्ध दर्शन की एक बात आती है, और बौद्ध दर्शन वाली बात को रख करके ये तर्क भाषाकार जो केशव मिश्र हैं, उन्होंने जो है ना उसका एक लाइन में खंडन कर दिया, तो इसको भी संपन्न कर लेते हैं। तो क्या होगा ना, प्रत्यक्ष प्रमाण जो चार प्रकार के बताए गए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण, उसमें अगर ये पढ़ लेते हैं ना आज, तो प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा खत्म हो जाएगी। फिर दूसरी जो चर्चा है अनुमान प्रमाण के बारे में, वो शुरू होगी। असल में पूरा का पूरा जो न्याय दर्शन है, पूरा का पूरा जो तर्क शास्त्र है, उसकी आत्मा जो है ना वह अनुमान प्रमाण है। तो उस अनुमान प्रमाण को हम धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर आज मैं चाहता हूँ कि आज के पाठ में ये प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा खत्म हो जाए। इसमें मोटा मोटी बात ये है कि बौद्ध दर्शन वाले जो है ना केवल निर्विकल्पक ज्ञान को जो है, निर्विकल्पक जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसी को सत्य मानते हैं, बाकी सबको जो है ना मिथ्या मानते हैं। और ये नैयायिक जो है ना ऐसा नहीं करते, नैयायिक दोनों ज्ञान मानते हैं, निर्विकल्पक भी मानते हैं और स्वविकल्पक भी मानते हैं। चलिए तो ग्रंथ की पंक्ति देखते हैं। ननु, ननु ये जो है ना, ये नया प्रश्न खड़ा किया जा रहा है बौद्ध दर्शन के अनुसार कि निर्विकल्पकम परमार्थतः, कि निर्विकल्पक ज्ञान जो है वो परमार्थतः है। परमार्थतः माने वास्तविक रूप, वस्तुतः। तो वस्तुतः जो है ना एक ही निर्विकल्पक ज्ञान होता है। क्यों? तो स्वलक्षण विषयम, क्योंकि वो निर्विकल्पक ज्ञान जो है वह स्वलक्षण होता है। स्वलक्षण मतलब स्वयं जो है ना लक्षित होता है, स्वयं ज्ञात होता है, उसको किसी दूसरे सहारे की जरूरत नहीं होती है। दूसरा सहारा माने नाम, जाति, गुण, क्रिया, इन सबों के द्वारा जो है ना जानने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इन सबों के द्वारा जानेंगे तो वह तो स्वविकल्पक ज्ञान होगा। निर्विकल्पक ज्ञान ऐसा होता है जो स्वयं जाना जाता है, उसको जाति, गुण, क्रिया इस सब की जरूरत नहीं पड़ती है जानने के लिए। तो चूंकि वह स्वलक्षण है, स्वयं लक्षित होता है, लक्षित माने ज्ञात होता है, इसलिए वही परमार्थता है, वस्तुतः वही एक ज्ञान होता है। तो वही कहा कि ननु निर्विकल्प निर्विकल्पकम परमार्थतः स्वलक्षण विषयम भवतु प्रत्यक्षम, कहा कि निर्विकल्पक जो है वस्तुतः स्वलक्षण विषय है, माने स्वयं लक्षित होता है, इसलिए उसको हम प्रत्यक्ष मान लेते हैं। लेकिन स्वविकल्पकम तु, किंतु स्वविकल्पक ज्ञान जो है वह तो शब्द लिंगवत, माने शब्द की तरह और लिंग की तरह, लिंग का अर्थ यहाँ पर अनुमान है। असल में वो जो है ना बौद्ध वाले जो है ना वो शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं, और प्रत्यक्ष प्रमाण में भी केवल निर्विकल्पक को वास्तविक मानते हैं और स्वविकल्पक को मिथ्या मानते हैं। इसलिए कहा कि स्वविकल्पक जो है शब्द लिंगवत, माने शब्द प्रमाण की तरह और लिंग प्रमाण की तरह, माने अनुमान प्रमाण की तरह, अनुगत आकार अवगाहित्वात्, वो जो अनुगत आकार होता, अनुगत आकार कहते हैं एक प्रकार का जो आकार है, एक प्रकार से जिस आकार का ज्ञान हो उसको कहते हैं अनुगत आकार। अब जैसे घटक घट जो है, हजार घट हैं, तो हजार घट का जो आकार है उसका जो ज्ञान होगा कैसे होगा, घटत्वेन जो है ना हजारों घट का ज्ञान होगा, पटत्वेन जो है ना हजारों पट का ज्ञान हो जाएगा, पशुत्वेन जो है हजारों पशु का ज्ञान होगा, मनुष्यत्वेन जो है हजारों मनुष्य का ज्ञान हो गया। तो ये जो मनुष्यत्वेन जो मनुष्य का ज्ञान हुआ, घटत्वेन जो घट का अनेकों घटों का ज्ञान हुआ, इसी को कहते हैं अनुगत आकार। अनुगत अनुगत माने एक तरह से ज्ञात जो होता है उसको अनुगत कहते हैं, और जो आकार एक तरह से ज्ञात हो उसको कहते हैं अनुगताकार। और अवगाही का अर्थ मैं बता चुका हूँ, अवगाहन करने वाला, विषय करने वाला। तो स्वविकल्पक ज्ञान जो है वो शब्द लिंगवत, माने शब्द प्रमाण की तरह और लिंग प्रमाण की तरह, अनुगत आकार अवगाहित्वात्, वह अनुगत आकार का अवगाहन कराता है। सामान्य विषयम, और उसका विषय जो है सामान्य होता है, विशेष नहीं होता है। कथम प्रत्यक्षम, फिर वह उसको हम प्रत्यक्ष क्यों माने, क्योंकि अर्थ जस्य व प्रत्यक्षत्वात्, जो अर्थ से जो है, जो अर्थ से उत्पन्न है, वही जो है ना प्रत्यक्ष कहलाता है। और ये जो है क्या कहते हैं, ये स्वविकल्पक ज्ञान वह अर्थ से प्रत्यक्ष नहीं है। अर्थ का मतलब वस्तु, तो वस्तु से जो है ना वह स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष नहीं मानना चाहिए स्वविकल्पक। आगे कहते अर्थ से च परमार्थतः सतः एवं तज्जनकत्वात्, कि अर्थ जो है माने वस्तु जो है वो परमार्थतः माने वस्तुतः सतः एवं माने वो जब सत्य रहता है तभी वह जो है ना जनक होता है ज्ञान का। स्वलक्षणम तो परमार्थतः सत, और जो स्वलक्षण है कौन, निर्विकल्पक ज्ञान, वो परमार्थतः सत है माने वस्तुतः वह सत्य होता है, असत्य नहीं होता है। न तो सामान्यम, असामान्य जो है वह सत नहीं होता है, असत होता है, इसलिए कहा न तो सामान्यम सत माने सामान्य जो है सत नहीं होता है। तस्य प्रमाण निरस्त, वह जो सामान्य जो है जैसे घटत्व पटत्व इस तरह की जो जाति है, मनुष्यत्व पशुत्व, ये सब जो है प्रमाण निरस्त है, ये बौद्धों का मत है, ये प्रमाण के द्वारा निरस्त हो जाता है माने ये सही नहीं ठहरता है, इसलिए इसका जो विधि भाव है माने इसका जो स्वीकार किया जाना है माने होना जो है वो अन्य व्यावृत्तियाँ, अन्य की व्यावृत्ति से जो है न ये इसका लाभ हो जाएगा, इसलिए तुच्छत्वात्, ये तुच्छ है, ये अन्य की व्यावृत्ति से लाभ हो जाएगा। मतलब ये है कि बौद्ध दर्शन वाले ना जाति भी नहीं मानते हैं, घट में घटत्व तो जाति नहीं मानते हैं, गो में गोत्व तो जाति नहीं मानते हैं, कहते हैं कि इसके बदले जो है ना हम अपोह पदार्थ मानते हैं, और अपोह पदार्थ से ही जो है ना इसका समान अनेक गो का, अनेक घट का, अनेक पट का जो है ज्ञान हो जाएगा। तो वो जो अपोह पदार्थ है ना उसी को अन्य व्यावृत्ति भी कहते हैं, माने जो दूसरे से व्यावृत्त कर दे, जो दूसरे से अलग कर दे, तो अन्य व्यावृत्ति के द्वारा आत्मनः माने आत्मा का माने घट की आत्मा, पट की आत्मा, आत्मा माने स्वरूप, इसका ज्ञान हो जाएगा, इसलिए तुच्छत्वात्, ये जो है तुच्छ है, सामान्य नाम की चीज जो है ना स्वीकार नहीं करनी चाहिए। ये जो है ना इतनी बातें बौद्ध दर्शन वालों ने बताई, उसको एक लाइन में ये कहते हैं मैवम, कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सामान्यस्यापि वस्तुभूतत्वात्, सामान्य जो है माने जाति जो है वह भी वस्तुभूत है, वस्तुभूत है माने वास्तविक होता है, उसको वह अनुभव में आता है, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। तो यहाँ के पैरा में इन्होंने बौद्ध दर्शन वालों ने दो बातें बताई मुख्य रूप से, एक तो निर्विकल्पक ज्ञान मात्र जो है एक ही प्रत्यक्ष होता है, स्वविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि जो स्वलक्षण होगा वही सत होगा, और जो सत है उसी को मानना चाहिए, और स्वविकल्पक जो है वह स्वलक्षण नहीं है, वह असत है, इसलिए उसको नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने बताई कि सामान्य नाम की जो जाति है उस जाति को भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह भी परमार्थता सत्य नहीं है, ऐसा बौद्ध दर्शन वालों ने कहा। उस पर न्याय दर्शन वाले कहते हैं कि नहीं, सामान्य को मानना ही चाहिए, वह भी वस्तुभूत है, वह भी वास्तविक है। फिर आगे लिखते हैं तदेवम व्याख्यातम प्रत्यक्षम, किस तरह से प्रत्यक्ष का व्याख्यान जो है यहाँ पर संपन्न हुआ। अब अगले पाठ से हम अनुमान के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, आज यहीं रखते हैं।